फिलहाल सबके साथ डाइनिंग टेबल पर जैसे जैसे सम्राट पिज्जा खाता जा रहा था, उसका कंट्रोल ढीला पड़ता जा रहा था। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि उसे अभी इसी वक्त आस्था की कमर को छू लेना चाहिए, क्योंकि कितनी बार अपने ख्वाबों में वो आस्था को अपने खूबसूरत बेडरूम में ले जा चुका था और उसके साथ सारी हदें पार कर चुका था। और अब आस्था की कमर को यूं देखते हुए उसकी ललचाई नजरें पूरी तरह से उसके खूबसूरत बदन पर जाकर ठहर गई थीं और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आस्था की कमर की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, सम्राट आस्था की कमर को छूने के बेहद करीब पहुंच चुका था। वहीं राधिका, एंजल और रौनक तीनों ही सम्राट की इस हरकत को बारीकी से देख रही थीं। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वे आस्था को हर हाल में बचाने के लिए तैयार हैं। आस्था भी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इस वक्त सम्राट क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं आस्था की पकड़ टेबल पर रखे कांटे पर पूरी तरह से मजबूत हो गई थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर हालात उसके मुताबिक नहीं रहे तो वो उसी क्षण उस कांटे को सम्राट के गले के आर पार कर देगी और उसका काम तमाम कर देगी। आखिर वो इस तरह सम्राट को खुद को छूने कैसे दे सकती थी? वहीं सम्राट को तो आस्था की कमर के अलावा जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि वो उसकी कमर को छू ले, उसे अपने वश में कर ले। राधिका, एंजल और रौनक तीनों ने भी उसी वक्त टेबल पर रखे कांटे उठा लिए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर आस्था पर जरा भी आंच आई और सम्राट ने अपनी हद पार की तो वे भी बिना एक पल गवाए उन कांटों को उसके गले के आर पार कर देंगी और सब कुछ वहीं खत्म कर देंगी। लेकिन इससे पहले कि सम्राट की परछाई भी आस्था पर पड़ती, माहौल की हवा जैसे थम सी गई थी और अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल सकता। क्योंकि ठीक उसी वक्त पता नहीं सम्राट को अचानक से क्या हुआ, उसकी आंखें पूरी तरह से भारी हो गईं और वो उसी वक्त बेहोश होकर टेबल पर ही गिर पड़ा था। अब जैसे ही सम्राट टेबल पर गिरा, सभी लड़कियां अचानक से उठ खड़ी हुईं और एक दूसरे की ओर देखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगीं। वहीं आस्था ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कांटा तुरंत टेबल पर रख दिया। बाकी लड़कियों ने भी बिना देर किए अपने अपने कांटे टेबल पर फेंक दिए। एक पल के लिए आस्था ने जब सभी के हाथों में कांटे देखे तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ चुकी थी कि वे क्या करने की कोशिश कर रही थी और किस हद तक जाने के लिए तैयार थीं। फिलहाल तीनों लड़कियां जल्दी से आस्था की ओर देखते हुए बोली, आस्था, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भले ही हमने सावधानी से गार्ड्स को यहां से हटवा दिया हो और इस ब्लैक डेविल को भी बेहोश कर दिया हो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। फटाफट काम को आगे बढ़ाओ। इतना कहते ही माहौल फिर से गंभीर हो गया। अब मजाक या भावनाओं के लिए जगह नहीं थी, सिर्फ मिशन था और उसे हर हाल में पूरा करना था। अब सभी लड़कियां पूरी तरह से अलर्ट हो गईं। आस्था ने तुरंत मारिया को इंस्ट्रक्शन दिए कि फटाफट बताओ आगे क्या करना है। मारिया ने तुरंत राधिका को उस कमरे के बाहर जाने को कहा। वहां जाकर राधिका ने चारों तरफ रास्ते में देखा, लेकिन उसे कमरे की लॉक की चाबी कहीं नहीं मिली। एंजल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए सम्राट के पास ही खड़ी थी और मन ही मन सोच रही थी, इतने हैंडसम चेहरे के पीछे कितना खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल वो अपने पोजीशन पर कंट्रोल करते हुए उसके पास ही बैठी रही। राधिका को फटाफट जल्दी करने के लिए सब कहने लगे थे, लेकिन तभी आस्था के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। जिस वक्त वो उसे उसके कमरे में ले जाने की बात कर रहा था, आस्था ने बाहर से ही जाकर सम्राट का कमरा देखा था और वहां उसे जल्दी में रखी हुई एक ऐसी चीज नजर आई थी जो उसे चाहिए थी। देर न करते हुए आस्था सीधे सम्राट के कमरे में गई और वहां जाकर उसने अच्छी तरह से पूरे कमरे को देखना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा कमरा एक खतरनाक थीम में सजा हुआ था। ब्लैक एंड व्हाइट, दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स, काली चादरें, काले पर्दे, सब कुछ डर पैदा करने वाला। उसे एक पल के लिए वही अजीब सा एहसास हुआ जैसा पहली बार शादी करके वो अरमान की जिंदगी में आई थी और पहली बार उसके कमरे में गई थी। वैसी ही भारी और घुटन भरी वाइब। तभी उसकी नजर ब्लैक बेडशीट पर रखी चमचमाती चाबियों पर पड़ी। सम्राट ने शायद आस्था को रिसीव करने की जल्दी में उन्हें वहीं रख दिया था। आस्था ने तुरंत चाबी उठाई, दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि राजवीर की बनाई हुई वो औरत खड़ी थी। वो उसकी तथाकथित बीवी थी जिसे राजवीर ने अपने हिसाब से कैद कर रखा था। आस्था ने देर न करते हुए फटाफट उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो औरत गहरी नजरों से आस्था को देखने लगी और गुस्से में बोली, तुम कौन हो? इस तरह से यहाँ क्यों आई हो? मेरे पति ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। और खबरदार, अगर तुमने मेरे पति के करीब भी जाने की कोशिश की तो, क्योंकि मेरे पति के करीब सिर्फ और सिर्फ मैं रह सकती हूँ।
ये कहते हुए वो औरत पूरी तरह से आस्था पर भड़कने लगी थी, लेकिन आस्था ने उसकी किसी भी बात का जरा सा भी बुरा नहीं माना। उल्टा उसने बहुत ही शांत भाव से अपना हाथ अपने कंधे पर रखकर कहा, देखिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। ये सुनकर वो औरत माथे पर गहरी हैरानी लाकर बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम, और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? हो कौन तुम? देखो तुम्हारे लिए इसी में भलाई है कि अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो तुम्हें शिकारी कुत्तों के आगे डलवा देगा। आस्था उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन इस वक्त सवाल जवाब करने का समय नहीं था, इसलिए उसने बिना एक पल गवाए उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी और उसे तेजी से बाहर की ओर ले आई। बाहर राधिका, रौनक और एंजल पहले से खड़े थे। जैसे ही उन्होंने उस लड़की को देखा वे सभी हैरानी में डूब गए। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दिन रात राजवीर की बदसलूकी और कैद ने उसकी हालत बुरी तरह बिगाड़ दी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। जैसे ही उस लड़की ने बाहर आकर बाकी लड़कियों को देखा वो एकदम चौंक गई और गुस्से से बोली, तो सारी लड़कियां यहां क्या कर रही हैं? लगता है तुम लोगों को तुम्हारी मौत यहां खींच लाई है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर सभी लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। माहौल अचानक और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। रौनक ने धीमी आवाज में कहा, इसे यहां से बाहर ले जाना आसान नहीं होगा, चारों तरफ सिक्योरिटी फैली हुई है। हम इसे यहां से निकालने आए हैं, लेकिन देखो ये हमें ही अपना दुश्मन समझ रही है। तब आस्था ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। आस्था ने रौनक के साथ मिलकर उस लड़की का हाथ थामा, क्योंकि वो खुद मास्क पहनकर आई थी। उसने तुरंत उसे भी मास्क पहना दिया और समझाया कि किस तरह से बाहर निकलना है, लेकिन वो लड़की बार बार घबरा कर पूछ रही थी, तुम लोग कौन हो, इस तरह से कैसे अंदर आ गए? वो अब पूरी तरह पैनिक करने लगी और जोर से चिल्लाने लगी। उसके इस तरह घबराने और चिल्लाने पर आस्था ने तुरंत उसको एक इंजेक्शन दे दिया, जो मारिया ने पहले से उसे दिया था, वही इंजेक्शन जो वंशिका के जरिए उनके पास पहुंची थी। वो केवल कुछ वक्त तक ही असर कर सकता था और उसे कंट्रोल में रख सकता था, लेकिन फिलहाल उनके लिए उतना वक्त काफी था। ड्रग्स का असर होते ही वो पूरी तरह से खामोश हो गई और सिर्फ आस्था के इशारों पर चलने लगी। आस्था ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और सबको मास्क पहनने का इशारा किया। फिर सभी हंसते खेलते ऐसे जैसे किसी पार्टी से लौट रहे हों बाहर की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में बड़ी सी घबराहट और डर था।
अब क्योंकि सम्राट ने पहले ही सब गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी ठाकुर साहब की लड़कियों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा, इसलिए सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी नजरें झुका ली। वे सिर्फ उनकी हंसी की आवाज सुन पा रहे थे, लेकिन एक बार भी किसी ने उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे लोग गेट से बाहर निकले तुरंत गाड़ियों में बैठ गए। मारिया ने बिना देर किए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन अब राजवीर की वो तथाकथित बीवी, जिसे राजवीर ने कैद रखा गया था, धीरे धीरे पैनिक करने लगी। ड्रग्स का असर उतर चुका था, वो दवाई सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए उसे काबू में रख सकती थी। उसके इस तरह चीखने चिल्लाने पर आस्था ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने गले से लगा लिया, जैसे उसे भरोसा दिला रही हो, अब तुम अकेली नहीं हो। हालांकि वो पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी मारिया ने जल्दी से उसे एक और इंजेक्शन दिया और कहा कि आसपास चेक कर लो, कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। मजबूरी में उसे दोबारा इंजेक्शन देना पड़ा और फटाफट से वे लोग सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में इस वक्त अलग तरह का बवाल मचा हुआ था, क्योंकि सभी लोगों को लड़कियों की फिक्र हो रही थी और किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। इससे पहले कि सब एक साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते, तभी मेंशन के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सभी हैरानी से दरवाजे की ओर देखने लगे और देखते ही देखते सभी लड़कियां अंदर आने लगीं। उनके चेहरे पूरी तरह से घबराहट से भरे हुए थे। हॉल में उस वक्त आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और अरमान सिंघानिया के साथ अविनाश और अबीर भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने लड़कियों के घबराए चेहरे देखे वे भी परेशान हो गए। आहान तुरंत आगे बढ़ा और रौनक को देखकर बोला, क्या हुआ हवा हवाई, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? लेकिन रौनक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह ध्रुव, आकाश और सुमित ने बारी बारी से सभी लड़कियों से सवाल किए। तभी अविनाश ने आस्था और एंजल को देखकर कहा, क्या हुआ गोरी, कुछ परेशान लग रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? फिर भी लड़कियां खामोश रहीं। तभी अविनाश छुंझलाकर बोला, एंजल, एटलीस्ट यू स्पीक अप, व्हाट्स हैपनिंग हियर? लेकिन एंजल भी चुप रही। फिर अचानक सभी लड़कियां एक तरफ हट गईं और वहां कोई और नहीं बल्कि राजवीर की बनाई हुई वो बीवी खड़ी थी, जिसके हाथ मारियो ने रास्ते में बांध दिए थे। ड्रग्स के असर तक वो शांत रही थी, लेकिन जैसे ही असर उतरा उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो पूरी तरह से अपने पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन मारिया और आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में उसके हाथ पैर बांध दिए थे। ध्रुव और आहान उस अनजान लड़की को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। आहान ने धीरे से कानों में फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या, भाभी मंदिर गई थी प्रे करने और किसी को अगवा करके ले आई। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि अब हम किडनैपिंग करके फिरौती मांगेंगे? रियली, क्या सिंघानिया इंडस्ट्रीज के शेयर मार्केट में गिर रहे हैं? जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव ने उसे घूर कर देखा और कहा, शांत रहो, इस वक्त तो कम से कम मजाक मत करो। अबीर भी खुद को रोक नहीं पाया, वो आगे आया और हल्के मजाक में बोला, क्या हुआ बटरफ्लाई? उसने एक बार फिर आस्था को बटरफ्लाई कहा था। तुम किसे उठा कर ले आई हो और क्या जरूरत थी किसी को अगवा करके लाने की? सब ठीक तो है ना? जैसे ही सभी आपस में बातें करने लगे, आस्था की नज़र भरकर अपने पति अरमान सिंघानिया की ओर गई। अगले ही पल उसने नानी माँ की ओर देखा, जो भारी आंखों से उस बंधी हुई लड़की को देख रही थी। अचानक नानी माँ खुद को रोक नहीं पाईं, वे अंश को दादाजी की गोद में दी और सीधे उस लड़की के गले से लिपट गईं। वो फूट फूट कर रोने लगीं। ये दृश्य देखकर सभी लोगों के मुंह हैरानी से खुले रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। नानी माँ एक किडनैप की हुई अनजान लड़की को इस तरह से पकड़कर क्यों रो रही थी? उस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा था, फिर भी उसके लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से उमड़ रही थी? नानी माँ रोते हुए उसके गालों को छू कर बोली, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, ये क्या हाल हो गया इसका? आस्था, आस्था, ये कहते हुए वे फिर रोने लगी। आस्था ने आगे बढ़कर नानी माँ को संभाला और धीरे से कहा, उन्हें अभी कुछ भी याद नहीं है नानी माँ, असर पूरी तरह बेअसर नहीं हुआ है। लेकिन वो लड़की पूरी तरह से छटपटा रही थी। तभी आस्था ने गहरी नज़र से वंशिका की ओर देखा और कहा, वंशिका, अब आगे से तुम्हारा काम शुरू होता है। वंशिका, जो अब तक चुप खड़ी थी, तुरंत आगे आई। उसने मारिया से कहा, दीदी इसे लैब में ले चलते हैं। ये कहते ही उस लड़की को जल्दी से लैब की ओर ले जाया गया। अब सभी लड़कों के चेहरे हैरानी से भरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। आहान खुद को रोक नहीं पाया, वो आगे बढ़कर बोला, ये घर में हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है और हमें कुछ पता ही नहीं। नानी माँ, आप इस अनजान लड़की के लिए क्यों रो रही हैं? आपको पता है ना, मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, तो आप अपने कीमती आंसू किसी अनजान लड़की के लिए कैसे बहा सकती हैं? आहान के सवाल पर नानी माँ खुद को रोक नहीं पाईं। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, वो अजनबी नहीं है। जैसे ही नानी माँ के मुंह से टूटी फूटी जुबान में ये शब्द निकले, सबके चेहरे हैरानी से भर गए। हॉल में सन्नाटा छा गया। आखिर कौन है वो अजनबी लड़की? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM।